पृष्ठ संख्या 132। पांचवें वर्ग के अंतर्गत अनेक ऐसी मांगें थी जिन्हें स्वीकार करके चीन अन्य चार वर्गों की मांगों की अपेक्षा अधिक पूर्णतया अपने पड़ोसी देश जापान का वशवर्ती हो जाता। इसमें मांग की गई थी कि चीन सरकार अपने राजनीतिक, वित्तीय एवं सैनिक मामलों में सलाहकार के रूप में जापानियों को नियुक्त करें। चीन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस विभागों पर दोनों देशों का संयुक्त प्रशासन हो। चीन या तो अपने पड़ोसी देश जापान से 50% या इससे अधिक युद्ध सामग्री खरीदे या एक ऐसी संयुक्त आयुधशाला स्थापित करे जिसमें जापानी विशेषज्ञों की नियुक्ति हो और जापान में निर्मित सामान का ही उपयोग किया जाए। यह भी मांग की गई कि जापान के अस्पतालों, स्कूलों एवं गिरजाघरों को चीन के मध्यवर्ती प्रदेश में भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हो तथा धार्मिक सिद्धांतों की पोषण के अधिकार को मान्यता प्रदान की जाए। यांगत्सी नदी की घाटी में रेलों के निर्माण संबंधी कुछ रियायतें दी जाए तथा फार्मोसा के सामने स्थित फुकियेन प्रदेश के विकास के लिए जापान के परामर्श के बिना विदेशी पूंजी न लगाई जाए। चीन में इन मांगों की बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और सभी प्रदेशों ने इनके प्रति विरोध प्रकट किए। कई विदेशी प्रतिनिधियों ने भी इनकी कड़ी आलोचना की तथा जापान में भी इसका तीव्र विरोध हुआ। चीन के लोगों को इन मांगों के सामने झुकने का अभिप्राय अपनी स्वाधीनता के समर्पण के समान प्रतीत हुआ, लेकिन फिर भी चीन अभी इसका सशस्त्र प्रतिरोध नहीं कर सकता था। इस समय देश पूर्णतः विघटित था तथा आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। चीनी सेना से जापान की युद्ध कुशल सेना का सफलतापूर्वक मुकाबला करने की आशा नहीं की जा सकती थी। यूरोप अभी अपने ही मामलों में इतना अधिक व्यस्त था कि उससे किसी तरह के विरोध की आशा न थी, और अमेरिका भले ही जापान के इस व्यवहार पर आपत्ति करे, परंतु उससे यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी आपत्ति का समर्थन सैनिक कार्रवाई से करेगा। इस विषय पर समझौते के लिए लंबी बातचीत चली और मई के आरंभ में जापान ने चीन को अंतिम चेतावनी दे दी, जिसमें उसने चीन से प्रथम चार वर्गों को अधिकांश बातों को स्वीकार करने की मांग की। पांचवें वर्ग के संबंध में बातचीत को कुछ समय के लिए स्थगित रखने को कहा गया। इस चेतावनी के सामने चीन को झुकना पड़ा और संधियों तथा पत्र व्यवहार द्वारा चीन ने पांचवें वर्ग की मांगों को छोड़ लगभग अन्य सभी मांगों को स्वीकार कर लिया और पांचवें वर्ग के संबंध में बातचीत स्थापित कर दी। यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि यद्यपि पांचवें वर्ग की मांगें औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं की गई, लेकिन इसकी कुछ बातें अंशतः व्यवहार में आने लगी थी, क्योंकि सरकार में जापानी सलाहकारों की संख्या एवं प्रभाव में वृद्धि हो गई थी। सन 1916 में पूर्वी भीतरी मंगोलिया के उपद्रवों से जापान को उस प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर और अधिक दृढ़ नियंत्रण स्थापित करने का एक बहाना मिल गया। इस बार भी चीन ने विरोध मत प्रकट किया, लेकिन इस बार जापान का रुख अधिक मैत्रीपूर्ण था और उसने समझौता कर लिया। इस समय चीन में जापान ही एक प्रमुख विदेशी शक्ति थी और दिसंबर 1915 में जब गणराज्य के स्थान पर राजतंत्र की स्थापना के प्रति औपचारिक विरोध प्रकट करने के लिए जापान के कार्यदूत ने फ्रांस, जापान तथा ब्रिटेन के मंत्रियों के वर्ग का प्रतिनिधित्व किया, तो यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो गई। जापान एक ऐसे वर्ग का सदस्य था जो जर्मनी को पद्दलित करने के लिए प्रयत्नशील था और इसलिए स्पष्ट ही उन देशों से जो जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में उसके साथी थे, जापान पर किसी प्रकार का दबाव पड़ने की संभावना न थी। रूस के साथ एक समझौते के द्वारा उसकी स्थिति और अधिक मजबूत हो गई। इसका विवरण जुलाई 1916 में प्रकाशित हुआ था। पोर्ट्समाउथ की संधि के बाद दोनों देश क्रमशः निकट आते गए और जर्मनी के साथ संघर्ष में जापान ने साइबेरिया के पार जहाजों द्वारा सामान भेजा और रूस की सहायता की। अब दोनों देशों की सरकार में परस्पर समझौता हुआ कि वे किसी अन्य देश के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जिसका उद्देश्य दोनों देशों में से किसी देश के हितों की हानि पहुंचाना हो, और दोनों देशों ने एक दूसरे को इस बात का भी वचन दिया कि यदि सुदूर पूर्व में किसी भी देश के प्रादेशिक अधिकारों या विशेषाधिकारों को खतरा पैदा हो तो दोनों देश उल्लिखित अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए आपस में परामर्श करेंगे। यद्यपि यह कोई औपचारिक संधि नहीं थी, लेकिन फिर भी यह संयुक्त कार्रवाई के लिए एक समझौता था। इस समझौते तथा आंग्ल जापानी संधि ने जापान को सुदूर पूर्व में दो सर्वाधिक प्रभावशाली यूरोपीय देशों की मित्रता एवं समर्थन का उतना ही पूर्ण आश्वासन दिला दिया जितना किसी भी औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय करार द्वारा संभव था। चीन व जापान के पारस्परिक संबंध 1917 से 1919। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम वर्ष तथा उसके बाद के आधे वर्ष में तथा वर्साई संधि के फलस्वरूप जापान को अपने निकट विशाल महाद्वीप पर और अधिक नियंत्रण प्राप्त हुआ। सन 1917 के आरंभ में फ्रांस तथा ब्रिटेन ने जापान को इस बात का आश्वासन दे दिया था कि शांति सम्मेलन में वे शांतुंग प्रांत में स्थित जर्मनी के पूर्व विद्यमान हितों तथा जर्मनी द्वारा अधिकृत भूमध्य रेखा के उत्तरवर्ती द्वीपों पर जापान के दावे का समर्थन करेंगे। इटली तथा रूस ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे किसी समझौते के मार्ग में वे रोड़ा नहीं अटकाएंगे। सन 1917 में जब पहले पहल चीन ने जर्मनी आदि देशों से राजनयिक संबंध विच्छेद किए और औपचारिक रूप से वह उनके विरुद्ध युद्ध करने लगा, तो इससे जापान के उद्देश्य को और अधिक पुष्टि मिली। इस समय पेकिंग प्रशासन पर जापान समर्थक दल का नियंत्रण था। नवंबर 1917 में जापान और अमेरिका के बीच लैसिंग ईसीई समझौता हुआ। इसके द्वारा अमेरिका ने प्रादेशिक समीपता के कारण चीन के कुछ भागों में, विशेष रूप से वे जो जापान के अधिक निकट थे, जापान के विशेष हितों को स्वीकार किया। इस बात की स्वीकृति से कुछ समय के लिए तो ऐसा प्रतीत होता था मानो अमेरिका ने एक बड़े एशियाई गणराज्य को जापान के हाथों में समर्पित कर दिया हो। 1918 में चीन व जापान के बीच हुए जल सेना एवं स्थल सेना संबंधी समझौतों से ऐसा प्रतीत होता था कि जापान चीन पर सैनिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, जिसका आभास 21 मांगों के पांचवें वर्ग के रूप में पहले ही मिल चुका था। चीन सरकार ने जापान से अनेक ऋण लिए, जिनके लिए उसे अपनी रेल व्यवस्था, खानों, वनों, तार व्यवस्था और करों को बंधक रखना पड़ा। सन 1917 में रूसी क्रांति के फलस्वरूप रूस की शक्ति छिन्न हो जाने से मंचूरिया में जापान की बढ़ती हुई शक्ति के सामने से एक बहुत रोड़ा हट गया, और इसी समय मंचूरिया, मंगोलिया और शांतुंग में जापान द्वारा और अधिक रेलों के निर्माण के संबंध में औपचारिक समझौते संपन्न हुए। पेरिस में प्रभावशाली चीनी प्रतिनिधि मंडल के विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी शांतुंग में जर्मनी के पूर्ववर्ती अधिकृत प्रदेशों पर जापान के अधिकार की पुष्टि की गई। चीन के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में जापान असफल रहा। विश्व के अन्य अनेक भागों के समान चीन में भी बहुत तेजी से राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो रहा था। विशेषतः विद्यार्थी वर्ग में राष्ट्रीयता की यह भावना अत्यधिक उग्र थी। शांतुंग प्रदेश के संबंध में पेरिस सम्मेलन द्वारा चीन की मांगों की अस्वीकृति ने चीनी जनता को और विशेषतः वहां के विद्यार्थी वर्ग को अत्यधिक क्षुब्ध कर दिया। चीनी जनता पहले ही जापान को अत्यधिक नापसंद करती थी और इस नई कार्रवाई ने उनके प्रति विरोध भावना को और तीव्र कर दिया। जापान द्वारा शांतुंग प्रदेश को लौटा देने के वचन पर चीन को लेश मात्र भी विश्वास न था, और केवल चीन की सैनिक अक्षमता के कारण ही इस समय युद्ध टल गया। इस समय चीन को एक सशक्त साधन मिला जो सैन्य शक्ति की अपेक्षा जरा सी कम थी, और वह था जापान का पूर्ण बहिष्कार। सन 1919 में जापान के विरुद्ध इस साधन का इतनी प्रबलता से उपयोग किया गया कि इससे उनके व्यापार को अत्यधिक हानि हुई। चीन का जनमत जापान के इतना अधिक विरुद्ध हो चुका था कि अगले 2 वर्षों में जापान द्वारा शांतुंग विवाद के बारे में समझौते के सभी प्रयत्न ठुकरा दिए गए। सन 1920 में जापान समर्थक दल के हाथ से सत्ता छिन गई। अपनी राजनीतिक असमर्थता के बावजूद चीन में एक ऐसी भावना का विकास हो रहा था जो जापान के लिए अशुभ थी, और इससे टोक्यो प्रशासन को चीन महाद्वीप के प्रति अपनी उस नीति की दूरदर्शिता पर भी संदेह होने लगा था जो 1914 के बाद से अब तक इतनी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। साइबेरिया में जापान की स्थिति 1918 से 1925। सन 1917 में रूस में राजतंत्र के पतन के बाद साइबेरिया में जो चेकोस्लोवेकिया के युद्धबंदी थे उन्होंने मिस्र देशों की सेनाओं में सम्मिलित होने के लिए यूरोप वापस लौटने का प्रयत्न किया। उनके पास वापस के लिए पूर्वी साइबेरिया और प्रशांत महासागर से होकर जाने वाला एक ही मार्ग था, लेकिन साइबेरिया में अव्यवस्था और विप्लव होने के कारण उनकी सुरक्षा को खतरा था। विप्लव के शमन के लिए सन 1918 में मिस्र देशों की ओर से साइबेरिया में सेनाओं के दस्ते भेजे गए। इनमें सबसे अधिक संख्या जापानी सैनिकों की थी और इसके बाद अमेरिका के सैनिकों का नंबर था। जापान ने अमेरिकी सरकार को बताई गई संख्या की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ी संख्या में सैनिक भेजे थे। फलस्वरूप इस बात की आशंका व्याप्त थी कि सामान्य विद्रोह की आड़ में विद्रोह शांत हो जाने पर भी किसी न किसी बहाने जापान अपनी सेनाएं वहां बनाए रखना चाहेगा। कोरिया की सीमाओं को खतरा था। साइबेरिया में भी जापानियों की काफी अधिक संख्या थी और साइबेरिया में जिन सरकारों का शासन हुआ उनसे इनके पारस्परिक संबंध काफी पेचीदा रहे। सन 1920 में कारापुतो के सामने आमुर नदी के निकट पर निकोलायवस्क में रूस के बोल्शेविक शासन के प्रति सहानुभूति रखने वाले एक छापामार सैनिक दस्ते ने वाणिज्य दूत सहित कई सौ जापानियों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे समस्या और अधिक जटिल हो गई। चेकोस्लोवेकिया की सेना के अंतिम दस्तों ने सितंबर 1920 में व्लाडिवोस्तोक से अपने देश की ओर कूच किया। जनवरी 1920 में अमेरिकी सरकार ने अपनी सेनाओं को वापस बुला लेने का निर्णय कर लिया था। ब्रिटेन, फ्रांस एवं इटली ने भी वहां से अपनी सेनाएं हटा ली और जापान ने अपनी सेनाओं को अपने देश में वापस लौटाना शुरू कर दिया। यद्यपि इसके बाद भी जापान ने कुछ समय तक व्लादिवोस्तोक और उसके निकटवर्ती प्रदेश तथा उत्तरी मंचूरिया में अपने सेनाओं को बनाए रखा और सन 1922 के अंत तक इन सेनाओं को भी हटा लिया गया, लेकिन निकोलाइवस्क की घटना के बहाने जापान ने इसके बाद भी कारापुतो का आधा भाग, जिस पर रूस का अधिकार था, अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद जापानी एवं रूसी अधिकारियों के बीच अनेक सम्मेलनों में विचार विमर्श हुआ। इनमें से 3 सम्मेलनों में कोई अस्थायी हल न निकल सका, लेकिन सन 1925 के आरंभ में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। फलस्वरूप दोनों देशों के बीच पुनः राजनयिक संबंध स्थापित हो गए और अधिकृत क्षेत्र से जापानी सेना को वापस बुला लिया गया। उत्तरी कारापुतो में जापान को कोयले तथा खनिज तेल से संबंधित कुछ रियायतें प्रदान की गई। साइबेरिया का यह संपूर्ण अभियान जापान को बहुत महंगा पड़ा। इससे जापान को आर्थिक नुकसान तो सहना ही पड़ा, पर साथ ही अन्य देशों के हृदय में जापान के प्रति संदेह एवं दुर्भावना भी पैदा हो गई। इस अभियान से जापान को प्रतिष्ठा तो कम मिली, लेकिन उसकी परेशानी बढ़ गई। पेरिस की शांति सम्मेलन और वर्साई संधि में जापान की स्थिति 1919। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों में जापान भी एक महत्वपूर्ण देश था, इसलिए शांति सम्मेलन में स्वभावतः उसे प्रमुख स्थान मिला। प्रतिनिधिमंडल का ध्यान किंतु जापान के प्रतिनिधिमंडल का ध्यान मुख्य रूप से सुदूर पूर्व और प्रशांत महासागरीय प्रदेश में जापान के हितों की रक्षा पर ही केंद्रित था। इस सम्मेलन ने जापान की जातीय समानता की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन उसे कोई ठोस लाभ भी प्राप्त हुए, जैसे सांतुंग में जर्मनी द्वारा अधिकृत संपत्ति पर उसे अधिकार मिल गया। राष्ट्रसंघ की ओर से भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित जर्मनी द्वारा पूर्व शासित मेरियाना, लैंड्रोन, कैरोलाइन तथा मार्शल द्वीपों पर जापान को शासन अधिकार प्राप्त हुआ और राष्ट्रसंघ में जापान को एक अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। अंततोगत्वा जापान को औपचारिक रूप से विश्व की बड़ी शक्तियों के बीच स्थान प्राप्त हो गया।